ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧ್ರಶ್ಯಗಣಂಜನಶಲಾಕಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನಂ ಶಿಶೈತನ್ನ ಮನೋವಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾಪಿತ ಜನ ಬಹುತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯ್ಯಂ ದದಾತಿ ಶಬದಂತಿ ವಂದೇ ಅಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಗುರುಣ ವೈಷ್ಣವಂಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಶಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುಣ ತಂ ನಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾಧುತಂ ಸಬೋಧುತಂ ಪರಿಜನ ಸಂಗೀತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀಷ್ಕಣಿತಂ ಚ ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ಯ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯುತಿಷ್ಠನಿ ವಂಶಾ ಕಲ್ಪತರುಹಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯವಚ ವತಿತಾನಂ ಪಾವನ ವೈಷ್ಣವೇ ಭುನಃ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪದಯತೆ ಕೃಷ್ಣಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರ್ತಿ ನಮಃ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೇನ ಮಂಧೋ ಜಗತ್ಪತಿ ಗೋಪೀಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಂತು ರಾಧಾ ಕಂತು ನಮಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಂಚನಿ ಗೌರಂಗೆ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವಭಾನುಷತ ದೇವಿ ಪ್ರಣಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀ ವಾಸುದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. तो आज विशेष तिथि है, तो इसके लिए हम दो आविर्भाव और एक तिरोभाव तिथि है। तो पहले श्री गौरनिताय कृष्ण मुरारम से राधा श्याम सुंदर ललिता विषय का जगद्गुरु श्री प्रभुपाद उपस्थित समेत महाराज एवं उपस्थित सभी भक्तों के चरण में कटि कटि नमन करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। तो पहले जाह्नवा माता के विशेष रूप में जाह्नवा माता के बारे में आज हम लोग सुनेंगे। ये पहले सबसे पहले इस गौड़ीय भक्त समाज में माता जी लीडर, सबसे पहले, इससे पहले कोई माता जी गुरु बनना नहीं था। तो सबसे पहले जाह्नवा माता जी, जो इनकी पूर्व परिचय है रेवती और बारणी, जो बलराम जी की दो पत्नी थी ये हैं, और ब्रज में राधारानी और उनकी छोटी बहन थी अनंग मंजरी। अनंग मंजरी की सेवा है कि राधारानी केश विनाश करना, राधारानी के केश की जो श्रृंगार है वो हमेशा अनंग मंजरी करती है, और कुंज में विशेष उनकी सेवा है, कुंज की डेकोरेशन करना, देखभाल करना सभी के लिए, ये नित्य सेवा नित्य लीला में कृष्ण के हमेशा करती है अनंग मंजरी। तो इसी इस गौरांग लीला में, इस अवतार में, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण नित्यानंद गुरु बलराम और ये जाह्नवा माता जो है रेवती और अनंग मंजरी दोनों, आप लोग देखें गौर पार्षद जो है परिकर है, गौर परिकर जो है ये लोग दो तीन मिल के हुए, दोनों तीन कुछ अंश होते हैं जो मिलते हैं। इसी प्रकार जाह्नवा माता जो है रेवती और अनंग मंजरी दोनों का मिश्रण है, दोनों मिलकर ये गोल, विशेष करके ज्यादा अनंग मंजरी है। तो शालग्राम और वृंदावन दास ठाकुर वंश विस्तार में बताया कालना में, और बहुत सारे ग्रंथ में शालिग्राम में है, शालिग्राम बंगाल में, वो शालिग्राम एक ग्राम है, उसमें इनकी पूर्वज उदरी थे, तो इसमें से गौरीदास, सूर्यदास सरखल के दो बेटी थी, एक बड़ी बेटी के नाम है वसुधा, दूसरी छोटी है वो जाह्नवा। तो पहले से ये नित्यानंद के प्रति समर्पित है। तो दोनों कन्या जब बड़ी हो गई तो उन्होंने सोचने लगे विवाह के लिए, लेकिन इसी समय उन्होंने सपने में देखे ताल ध्वज रात आए उनके घर पे, सपने में देखे सूर्योदय साइकिल। तो फिर नित्यानंद प्रभु के खबर आए, राजी भी हो गया, जानते भी है सब तो तत्व, तो फिर भी यह सन्यासी है। नित्यानंद क्या है, सन्यास लिए थे, सन्यासी है। तो ये पहली बार है जो सन्यासी फिर शादी करेंगे, हमारे परंपरा शुरू से ही। तो इसके लिए बहुत बहुत ये हो रहा था, नित्यानंद आ भी गए फिर भी रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे। समाज की डर से, जानते हैं सूर्योदय, जानकर भी समाज के डर से वो राजी नहीं हो पर है। तो वसुद्ध वसुदा शरीर छोड़े जो भी है, बहुत लंबी कथा है। तो जब शादी हो गए, वसुदा के साथ शादी हुआ, वसुदा के साथ शादी हो गए। तो इसके बाद एक दिन वसुदा और नित्यानंद प्रभु प्रसाद ले रहे थे, ठाकुर जी कृष्ण प्रसाद। तो इसी समय जानवा सर्विस कर रही थी, बार बार लाए कृष्ण प्रसाद, भगवान ठाकुर जी को प्रसाद लाके दे रहे थे, और दोनों बैठ के प्रसाद पा रहे थे, ये सर्विस कर रहे थे जानवा। तो इसी समय वो लड़की होने से बाद भी वो घूंघट लगाती थी, तो घूंघट उनके निकाल गए। तो तुरंत और दो हाथ अपने परसने के लिए, अपने सामान दो हाथ में, दो हाथ बंद है, तो तुरंत घूंघट उड़ गई। तो घूंघटे जब हट गए तो तुरंत उन्होंने और दो हाथ निकल के घूंघट को संभाला। तो नित्यानंद जब देखे तुरंत सर्विस करने आए और बैठा के दाएं बैठा दिया, बैठा दिए। और सूर्योदय सर्कल आए, आने के बाद बोला ये तो वसुदा तो मैं शादी किए हैं, दहेज के रूप में जानवा को, मैं जानवा दहेज के रूप में है। तब से दोनों वो दो बहन दोनों ही नित्यानंद में समर्पित थी। तो ये दहेज के रूप में नित्यानंद प्रभु जानवा को ले लिए, दोनों पत्नी है। तो एक बार क्या हुआ, दोनों सेवा कर रहे थे, नित्यानंद विश्राम करके भोजन करके विश्राम कर रहे थे सूर्यदास के सर्कल के घर पे, और दोनों सेवा कर रहे थे, वसुदा चरण सेवा और वो तंबुल बना बना के नित्यानंद प्रभु को जानवा दे रहे थे। इसी प्रकार ऐश्वर्य प्रकार जैसे शेरशाही जैसे नित्यानंद प्रभु हो गए, और दोनों वसुदा और जानवा दोनों चतुर्भुज रूप में हो गया, और पूरा किरण बिखार गए। तो देखा लाइट कहाँ से आ रहा है, तब बिजली नहीं होते थे, लाइट कहाँ से आ रही है। तभी जाके सूर्योदय सर्कल एवं गौरीदास जाके देखे, नित्यानंद शेषशाही जैसे सोया हुआ है, और दोनों बेटी वो साक्षात लक्ष्मी रूपा है, दोनों चतुर्भुज धारण करके बैठी है। तभी तुरंत नित्यानंद के चरण में गिरे सूर्योदास गौरीदास। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु, इसके पहले बैरागी थे, कोई घर कुछ भी नहीं था, पहले नवद्वीप में आए। नवद्वीप में जब सची माता दोनों पत्नी लेकर नित्यानंद प्रभु, और हमेशा सची माता सोचती थी ये विश्वरूपी है, तो बहुत खुश हुई। दोनों माता को सची माता अपने गोद में बैठाई, बहुत आशीर्वाद दिए, कोई दिन तक रहे। फिर अद्वितीय आचार्य के घर आए, तो फिर आके उन्होंने अपने कुटिया बनाए, अपने रहने का वासस्थान खड़दह में, यहाँ रहकर जो भी प्रचार कार्य आदि करते थे, वसुदा जानवा उधर खड़दह में रहते थे। इसी प्रकार जो जानवा है, इनके कोई बच्चे नहीं है, जितने भी बच्चे हुए ये सब वसुदा के है। तीसरी प्रकार वो रहे, आप लोग जानते हैं कि नित्यानंद के कोई पुत्र अभिराम ठाकुर प्रणाम कर करके उड़ा दिए। इसके बाद गंगा, एक नित्यानंद प्रभु की बेटी के नाम है गंगा है, और वीरभद्र है, वो जानवों का गोद में बैठे थे, वो प्रणाम किए, कुछ नहीं हुआ। तीसरे प्रकार कुछ दिन बाद नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो गए, तो इससे पहले वो दीक्षा नहीं लिए थे, वीरभद्र गोस्वामी दीक्षा नहीं लिए थे। एक दिन उन्होंने माँ को माँ जानो माता को बीड़ा आज्ञा लेकर वो चल दिया दीक्षा लेने के बैंड पार्टी एकदम वाद्य यंत्र के साथ नाव में चलकर वो जा रहे थे शादी के या दीक्षा के लिए अद्वित आचार्य से दीक्षा लेना। एक्चुअली पहले आते समय भी आचार्य पहले आए नित्यानंद प्रभु आए इसके बाद महाप्रभु आए। जाते समय पहले महाप्रभु गए कोई साल तक नित्यानंद प्रभु रहे उसके बाद में अद्वित आचार्य दोनों को भेजने के बाद गए। बोलते हैं जो ब्राह्मण जब आह्वान करते हैं पूजा करके फिर विदाई करते हैं अद्वित आचार्य दोनों को विदाई किया। मिट्टी की मूर्ति होते हैं ना तो उसको पूजा करते समय ब्राह्मण उनका आह्वान करते हैं। तीसरी प्रकार अद्वित आचार्य का तुलना दिए कि ये जगत के उद्धार के लिए महाप्रभु दोनों को बुला के लाए थे ब्राह्मण अद्वित आचार्य फिर बोले अभी हो गया जाओ। तो इसके बाद नित्यानंद प्रभु चले गए तो वो वीरभद्र दीक्षा के लिए चले। तो माता के बिना परमिशन लेकर जब चले और वाद्य यंत्र जब उनके कान में जानवा माता पूजा कर रहे थे वो कान में आए तो उसने अभिराम ठाकुर विहार थे तो बोले क्या हो रहा है। बोले आपको पता नहीं माँ वो तो वीरभद्र दीक्षा के लिए जा रहे हैं दीक्षा लेने के लिए अद्वित आचार्य। बोला माता से बिना पूछे दीक्षा के लिए जा रहे हैं बुलाओ उनको कम से कम दीक्षा लेने चाहे ठीक है लेकिन माता जी से बोल के तो जाना चाहिए ना आज्ञा लेके जानी चाहिए। तो उन्होंने और वीरभद्र अभिराम जाके गए बुलाने के लिए गंगा के बीच में चले गए ना उनको सुनाई नहीं दिया। अभिराम भी काम नहीं है मारा फ्लूट था बंशी था मारा बंशी वहां से मारा तो नाव टूट गया टूट गया तो सभी अभी तैर तैर के आ गए। कोई जगह बोलते हैं वीरभद्र गोस्वामी वो जैसे हम मैदान में जैसे चलते हैं वीरभद्र गोस्वामी ऐसे चल के आ गए वो उल्टा और नहीं गए इधर ही चल के आए। तो बोले क्या क्या बात है कैसे तोरा क्यों मेरा नाव। बोले तुम बिना पूछे जा रहे हो इतना बोला रहो सुन नहीं रहे हो तो क्या करे तुमको तो वापस लाना माँ की आज्ञा है। तो बोला क्या बात है तो आए तो आने के बाद माँ पूजा कर रही थी एक हाथ में दीप घुमा रहे थे दूसरे हाथ में घंटी। इसी समय उनके घूंघट चले गए और गए तो तुरंत माता जी और दो हाथ निकले और संग साथ साथ घूंघट लगाए। ये इसलिए है कि वीरभद्र प्रभु स्वयं उनकी माँ है वो भी जन्हवा को एक साधारण स्त्री जैसे समझ रहे थे उनको शर्म आ रही थी कि लेडीज से हम कैसे दीक्षा लें लेडीज को कैसे गुरु बनाए माँ हो जो भी है। तो इसके लिए जन्हवा माता ने उनको देखाया कि मैं कोई कोई जगह बोलता है चतुर्भुज कोई जगह बोलता है षडभुज दिखाए हॉल मुशाल आदि सब कुछ दिखा दिए कोई कोई जगह बोलता है नीताई और जन्हवा एक ही है। तो इसी प्रकार वो छह भुज कोई कोई जगह बोलते हैं छह भुज दिखा दिया हॉल मुशाल सब कुछ दिखाए। तो वो समझ गया कि मैं जैसे माँ को समझ रही थी एक साधारण है तभी माँ के चरण में जाके गिरे कि माँ मैं और दीक्षा लेने नहीं जा रहा आप ही मुझे दीक्षा दे दो। तीसरी प्रकार माँ वीरभद्र गोस्वामी को दीक्षा दिए ये पहली डिसाइपल है। इसके बाद जो नित्यानंद प्रभु जो प्रेम धारा को चला रही थी वो कार्यो नित्यानंद पूरा सारा कार्यो अपने ऊपर ले लिए। ऐसे हर जगह जा जाके विशाल विशाल प्रोग्राम माताजी करती थी विशाल विशाल प्रोग्राम करती थी और नित्यानंद जैसे प्रेम प्रेम प्रचार कर रहे थे महाप्रभु की आज्ञा से प्रचार कैसे होनी चाहिए महाप्रभु के अनर्गल प्रेमाभक्ति करहे प्रकाशे गंगा की धारा यमुना की धारा में कोई रोकवाट कभी नहीं है अनर्गल मतलब प्रचार कितनी जरूरी है। नित्यानंद कहे जाओ गौर देशे अनर्गल प्रेमाभक्ति करो हे प्रकाशे मतलब कोई रोकवाट नहीं है महापुरुष इतना प्रेम करते थे फिर भी बोले श्रीपाद मोर आज्ञा अवश्य पालीवा पतिवर्ष नीलाचल तुम्ही ना या शिवा हर साल आपको प्रचार करना है नीलाचल नहीं आना है नीलाचल आया तो 6 महीना प्रचार बंद छह महीने के लिए प्रचार बंद, आने में 20-25 दिन, जाने में 20-25 दिन, 4 महीना उधर रहेगा, उससे 10-15 दिन पहले रथयात्रा के बाद स्वयं एकादशी को चतुर्मास शुरू होते हैं, तो इससे पहले गुंडीचा से पहले पहुंचते हैं, बिल्कुल 6 महीना बंद होते, इसलिए बोला हर साल नहीं आना है, तो प्रचार इतने जरूर है। तो उसी प्रचार की धारा को जाह्नवी माता के नेतृत्व में सारा गौर देश में ऐसे प्रचार कार्यो उन्होंने प्रारंभ किए। तो इसी प्रकार प्रचार कार्य वो कर रहे थे, तो उसे बीच में उनको फिर वृंदावन आई। वृंदावन आके गोस्वामी टेम्पल आदि सभी वृंदावन के द्वादश वन को घूमे। तीस के बाद यहां से उनको खबर मिला कि 3 पुरुष के बारे में, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास और श्रीनिवास आचार्यों के बारे में जीव गोस्वामी बताए कि मैं उनको गौर देश में भेजा, चाहिए भी था, माता भी चाहते थे कि प्रचार के लिए, तो माता जी उनको दर्शन के लिए फिर गई, यहाँ से बंगाल चली गई वृंदावन से। तो उजाक के श्रीनिवास से मिले, फिर नरोत्तम से, खेतरी की जो विशाल उत्सव है, खेतरी आदि में उत्सव होते थे, कोई सामान रखने के लिए बर्तन इतने बड़े बड़े, खिचड़ी वगैरह रखने के लिए बड़े बड़े तालाब बनाना पड़ता था, तो इसलिए डालपुकुर भी है ना, कहां पे डालपुकुर, कहां पे है ये, इसमें जाजी ग्राम में, तो दाल रखने के लिए तालाब बना देते थे। तो इतने बड़े फेस्टिवल, तो उसी फेस्टिवल में सभी गौड़ीय जो प्रधान रघुनंदन आदि जो भी महान वैष्णव जो सभी खेतरी उत्सव में गए थे, उनकी जो कुकिंग की बहार है पूरा जाह्नवी माता जी के ऊपर, विग्रह की प्रतिष्ठा की पूजा आदि की बहार श्रीनिवास आचार्य के ऊपर है, ऐसे पूरा सारा दायित्व उन्होंने और ठाकुर जी के लिए भोग स्वयं जाह्नवी माता बनाई। और इसमें जाह्नवी माता को भी पता चला, नरोत्तम दास ठाकुर को पता चला कि आज इस गौर पूर्णिमा, पहले बोलते हैं कि इससे पहले ज्यादा ऐसे कोई गौर पूर्णिमा नहीं होता था, नरोत्तम दास ठाकुर पहले शुरू किया ऐसे गौर पूर्णिमा, और उसमें से विग्रह का प्रकाश किया, पहले दिन गौर पूर्णिमा की ओपनिंग हुआ, और महाप्रभु कोई नहीं बना पाया, महाप्रभु एक स्वप्न में आके प्रकट हुआ था। तो इसी गौर पूर्णिमा दिन सब पार्षद के साथ महाप्रभु कीर्तन में भाग लिए। फिर बंगाल की एक सिस्टम जो है बहुत आदर के साथ होता है, स्वागतम करना, विदाई देना, ये बहुत ही सुंदर से रिसेप्शन जो होते हैं ना, बहुत अच्छा से होते हैं, और विदाई के समय भी कम से कोई कोई किलोमीटर तक चले जाएंगे उनको स्वागत के लिए पैदल, पहले गाड़ी पर नहीं था। तो इसी प्रकार हम जानते हैं तेलिया बुदिर तक शनिवार जब गए तो नरोत्तम तेलिया बुदिर तक आ गए उनको रिसेप्शन के लिए। तो इसी प्रकार सभी को विदाई हो गया, जाह्नवी माता आकर फिर प्रचार कार्य किए। फिर उन्होंने एको चक्र गए, एक चक्र जाकर उन्हें स्वप्न में अपने जाह्नवी माता की सास जो है और पद्मावती हराई पंडित के दर्शन हुए। एक वृद्ध उन नित्यानंद प्रभु के घर पे कोई नहीं था, वो टूट गए थे, वो कोई नहीं था ना, नित्यानंद प्रभु भी गए नहीं, तो उसी घर में रुके थे जाह्नवी माता। और उसी समय सारे एक वृद्ध व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को दर्शन की, सभी कथा सुनाए, माता बहुत प्रेम से श्रवण किए, मूर्छित हो गई लीलाओं को, नित्यानंद की बाल लीलाओं आदि को श्रवण करके। दूसरा 12 साल की लीला एक चक्र में हुई, इसके बाद तो नित्यानंद घर छोड़े। फिर दोबारा उन्होंने ऐसे प्रचार कार्य करके उन्होंने फिर दोबारा वृंदावन आने के लिए निकली। तो दोबारा जब वृंदावन के लिए चले तो एक गांव में जाह्नवी माता रुकी थी, उसी गांव में देवी उपासक सब रहते थे। देवी उपासक देखे
एक विधवा ब्राह्मणी है, शाम को सभी उनकी पूजा कर रहे, स्तुति कर रहे हैं, तो उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, कोई देवी मंदिर नहीं जा रही, कोई देवी मंदिर नहीं जाता। तो गांव के लोग जो है देवी उपासक बहुत गाली देने लगे, गांव वाले वो जो आए टूरिस्ट उसी गांव में रुके थे, सभी को गाली दे, कैसे आदमी है ये, कोई देवी मंदिर में नहीं जा रहे, एक ब्राह्मणी है, विधवा है, उनको इतना पूजा कर, मनुष्य को पूजा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, देवी को नहीं। तीसरी प्रकार सभी लोग बोले और वो लोग कोई सम्मान नहीं कर रहे थे जानवा माता की। फिर ऐसे बोल के देवी के पास गए, जाके वो लोग प्रणाम किए, स्तुति किए, फिर बोले देवी के कोप से किसी का रक्षा नहीं होगी, ऐसे बोल के रात को लोग जाके सो गए। रात को जब सो गए तो इसी समय फिर 12 बजे सभी लोगों को सपने में आ गई देवी। देवी आके बताती है कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये नित्यानंद शक्ति है, ये बलराम की जो पत्नी है बारुणी है, तो ये कोई साधारण, इसके चरण, इनकी चरण में आप लोग अपराध किए हैं, तो यही देवी का उपासना की फल है। वो कुछ रुष्ट हो जाए, बोला तुम लोग जाके उनसे क्षमायाचना नहीं करोगे, समाज सारे ब्राह्मण के चरण में आपका अपराध हो गया, अपराध के लिए आप क्षमायाचना नहीं करोगे, सबको मैं ही श्रृंगार कर दूंगी, यही देवता की है कि भगवान को आप कुछ भी हो, कैसे भी, जैसे तैसे हरि नाम गंगा स्नान कईले अचिरे सद्य व्यक्ति हईबे सद्य मुक्ति हईबे कहले, बोले जैसे तैसे गंगा स्नान हरिनाम करने से अचिर में सद्य मुक्ति हेला में भी मिलेगा। इसी प्रकार भगवान हरि भजन की है, हरि को भी ऐसे नहीं करेगा, थोड़ा एक फूल भी दे दिए उसको रक्षा करेंगे। तो देवी उनको बहुत डराया धमकाया, आप जाओ सुबह सुबह जाके सभी जो माता जी के चरण में और जो भी ब्राह्मण लोग आए हैं भक्त लोग सबके चरण में क्षमायाचना कर दीक्षा लो जाके, देवी की करा वाडर है। तो ये लोग तो तुरंत उठे, सभी को सपने में आ गए, तो सभी लोग बहुत डर गए और कैसे ना कैसे उसको रात को रात बिताए और सुबह सुबह गले में वस्त्र लगा के सभी लोग आकर सभी दूर से सष्टांग दंडवत करना शुरू कर दिया, नहीं तो गर्दन उड़ने वाला है। इसी से देवी की आज्ञा है, तभी जाके सभी लोग बोले। वैष्णव की एक लक्षण है कि कितने भी अपराध करे, जैसे से निताय को सुंदर कृष्ण लामनादार शमशंद ललिता विशाखा देवी की, तो एक स्वभाव के है वैष्णव, कितने भी हृदय से यदि अपराध की समायाचना करे तो रियल वैष्णव जरूर क्षमा कर देंगे, कितने भी घोर अपराध करे क्षमा कर देते, ये वैष्णव की स्वभाव है। और रियली आपने कोई गलती कर दिया, कोई अपराध कर दिया, रियली अपने हृदय से आप समायोचना किया तो आपका कार्य हो गया, वो क्षमा नहीं किया उसके ऊपर है। यदि रियली वैष्णव है तो उनको क्षमा करना चाहिए। आप यदि हृदय से ऊपर ऊपर से तो दूसरी बात, हृदय से आप उनसे समायोचना किया तो आपका खत्म, दिल से अपनी समायोचना किया वो नहीं किया तो उनके ऊपर है। इसी प्रकार सभी लोग आके गिरगिराए, रोए, समायोचना किए, तो सभी जानवा माता उनके समायोचना किए, उनको दिव्य रूपों को भी दर्शन दिए, उनके चतुर्भुज रूप के रूप में भी दर्शन दिए और सभी ब्राह्मण लोग उनसे दीक्षित किए। इसी प्रकार जानवा माता आई, धीरे धीरे आते हुए इधर नजदीकी जब आ गए, तभी एक्चुअली महाप्रभु पहले जगदानंद पंडित को समझाया कि इधर काशी से पहले काशी तक तो ऐसे ही आ जाना, इसके बाद अकेला नहीं जाना, कोई क्षत्रिय आदि के साथ में जाना है, नहीं तो अकेला गौरी को मिलेगा, सब कुछ लूट लेगा, फिर छोड़ेगा नहीं, वो उसको दास बना लेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए महाप्रभु जगदानंद पंडित को। तो इसी प्रकार जब इन्होंने यूपी में या बिहार में कोई बताए नहीं, जब आए रुके ये गांव में रुके, तो उधर ब्राह्मण थे और दूसरे भी लोग थे, लेकिन वो बहुत डाकू थे, लुटेरा थे। तो वो सरदार थे दो ब्राह्मण, और उसके साथ बहुत अनुचर है उनके साथ। तो ये लोग देखे ये गौरिया आए हैं, ये मंदिर जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत धन संपद होगा। तो इसलिए वो लोग सभी, तो पहले तो बंदूक नहीं हुआ करता था, जो भी तलवार वगैरह लेके लोग अटैक करने के लिए चाह रहे थे, बड़े भारी दल लेकर ऐसे सोच ही रहे थे। तो इसी समय लोग चलने लगे, चलते रहे, पूरा रात बीत गया। रात बीते, बीतने के बाद देखे जहां पे है वहीं पे खड़े हैं। मतलब वो जो अभी दौड़ने के लिए बेल्ट होते हैं ना, बहुत तेज, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर वेग से चल रहा है, घंटे भर चलते हुए बेल्ट के ऊपर ही होते हैं। तो ऐसे जानवा माता के बेल्ट लगा दिया उनको, जितने तस्कर थे वो बेल्ट लगा दिया, चल रहा है, रात भर चला, चलते चलते वही रुक गए। सुबह हुआ तो देखे जहां पे खड़े थे वही पे है। तब ये लोग सभी सरदार के साथ सभी लोग समझ गए, ये कोई हम लोग समझ रहे थे कोई साधारण ऐसे ही तीर्थयात्री टूरिस्ट होगा, ऐसे टूरिस्ट नहीं है। तब मन में ग्लानी जब होते हैं, तो ग्लानी हुई, बहुत मन में ग्लानी हुई। तो इसके बाद उन लोग विचार किया, अभी बहुत सारे लोगों को ऐसे हृदय परिवर्तन हो जाता है, अलौकिक कार्य देखने से तुरंत हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। तीसरे प्रकार उनके हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बोले कि हम लोग बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो हम लोग अभी का लोग क्या है, ऐसी गलती होने से हम सामने नहीं जाने चाहते हैं। ये हमारा, हम लोग गलती करना हमारे लिए स्वाभाविक है, लेकिन भगवान के पास फिर भी इस गलती को छुपाना स्वाभाविक नहीं है। लेकिन पहले के लोग ऐसे, उनके अंदर ये तो बहुत दुष्ट होते थे, लेकिन जब समझ जाएंगे तुरंत सरेंडर कर देंगे। वो लोग आके फिर जानवा माता के चरण कमल में दंडवत प्रणाम किए, गिर गिराए और सभी बात बताए कि ऐसे ऐसे हम लोगों के मन में विचार था। तब जानवा माता सभी लोगों को क्षमा कर दिए। तो इसी प्रकार जानवा माता फिर मथुरा में आई। मथुरा में आकर सभी लोग पहले जब आते थे विश्राम तीर्थ में, पहले स्नान करते थे, कोई भी जितनी आचार्य आए पहले, हम लोग तो बिल्कुल इस्कॉन मंदिर में आ जाते डायरेक्ट, गाड़ी में चढ़ के उतारते भी नहीं है। तो वो पहले यमुना को स्पर्श से पूरा महापुरु आदि जो भी है सष्टांग दंडवत करके रोएंगे, फिर यमुना पार होकर विश्राम तीर्थ में स्नान करेंगे। स्नान करके फिर केशव जी आदि दर्शन करके, महापुरु तो 24 घाट में स्नान किया, यमुना जी के 24 घाटों में स्नान किया महापुरु। इसी प्रकार जन्मा माता जी लोग स्नान किए, स्नान करके जन्म स्थान आदि दर्शन किए, फिर वृंदावन आई। वृंदावन आके सभी गोस्वामी मंदिर को, मंदिर आदि ये सब दर्शन किए, और धीरे धीरे वन आदि रघुनाथ द्वादश गोस्वामी से मिले राधा कुंड में जाकर, फिर जीव गोस्वामी से। इसी प्रकार बड़े प्रेम से 12 वन को फिर ऐसे भ्रमण करते करते एक बार एक ब्राह्मण थे, उनके वृद्ध हो गए थे, बहुत उम्र हो गया था, फिर कुछ बच्चे, एक बच्चे छोटे से लड़के उनका हुआ था। वो बच्चे जानवा माता जब उसी गांव में पहुंचे तो वो बच्चे मर गए थे, पहले ही मरा हुआ था। माँ जा रहे थे तो उनको पास वो देखे कि इतने क्यों रो रहे हैं, तो माता जी जाके पूछे कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा तो कोई बच्चे नहीं है, एक लड़के थे बहुत उम्र में, एक बच्चे जन्म लिए थे, ये भी थोड़ी छोड़ चुके हैं। तब जानवा माता जी उनको जीवित कर दिए। तो इसी प्रकार जानवा माता जी बहुत ही वृंदावन में घूमे, और गोविंद जी को भी कविराज उपाधि दिए,
इसी प्रकार वृंदावन बहुत एकदम वृंदावन में रहे।
और गोपीनाथ जी के जो राधारानी है वो बहुत छोटे हो रहे थे, छोटे लग रहे थे। तो जनो माता जी बताए कि नहीं, मैं एक बड़े विग्रह बना के, शायद इधर बनाने वाले था कि नहीं, बंगाल से विग्रह लाना है, बंगाल से। एक तो गोविंद जी के पास आप पहले आदि एक्चुअली राधारानी नहीं थी, किसी के पास राधारानी नहीं थी, गोस्वामी लोग कोई राधारानी की पूजा नहीं किए, केवल मदन मोहन जी है, गोविंद जी है, गोपीनाथ जी है, सभी अकेले ठाकुर जी थे।
तभी उड़ीसा में राधारानी थी, उड़ीसा से वो लक्ष्मी के रूप में पूजा करने चाहे तो
एक गांव राधा, नाम गांव का नाम राधारानी है क्या है,
ऐसे कुछ वो पे मिले राधारानी को, लक्ष्मी के रूप में समझ रहे थे पूजा करने। तो राधारानी स्वयं सपने देखे बताया कि मैं लक्ष्मी नहीं हूं, मैं तो ब्रज की हूं। तो उधर से जानव माता जी, राजा फिर बोले, राजा भेज दिए, तो जानव माता जी पहले गोविंद जी के पास आदि सभी के पास लेके आए राधारानी। तो गोपीनाथ के पास जो राधारानी थी ये बहुत छोटी थी हाइट में, तो उन्होंने सोचे, तो पहली बार की बात है, तो उन्होंने फिर राधारानी को निर्माण करके फिर दोबारा राधारानी उन्हें भेज दिए। तो इसके बाद जो है घटना हो चुकी है, मतलब जानो माता इतना देर तक थी, इसे समझ सो कैसे बैठते हैं, वो बहुत बहुत देर की बात है जो मंदिर वगैरह तोड़ा हुआ है, तभी तो काम्यवन में होगा। तो काम्यवन में जब जानव माता थी, तभी उसी समय जानव माता जी गोपीनाथ जी की आरती किए। आरती करने के बाद आरती वगैरह, आरती समर्पण हो गया, समाप्त होने के तुरंत दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होने से फिर कोई कई जगह बोलते हैं जानव माता आरती करके निकाल रही थी, भगवान गोपीनाथ जी ने उनको आंचल जो है कोने पल्लू जो है पकड़ लिए, पर खींचे और अपने लेफ्ट साइड में खड़े कर दिए। और इसमें नित्यानंद वंश विस्तार जो है, इसमें भक्ति रत्नाकर में बताते हैं कि दरवाजा अपने बंद हो गया, गोपीनाथ जी का आरती समाप्त तो हो गया साफ सुथरा होने के बाद, जानो मत जैसे ही आजूर कर खड़ी थी तुरंत दरवाजा बंद हो गया। तब दरवाजा जब बंद हो गया तब ये पूछ रही है कि देखिए क्या बात, कुछ समय बाद दरवाजा खोले, लेकिन जानव माता नहीं थी। तो जानव माता देखे वो गोपीनाथ जी की जो मूर्ति है राधा रानी साइड में आ गए, दूसरी एक मूर्ति है वो जैसे पीतल की जैसे मूर्ति हो गई, और वो श्रीमती जानव माता जी है। तो अभी जो भी अभी इधर भी और कहीं पे अब लोग जो गोपीनाथ के साइड में जो लेफ्ट साइड में है वो जानव माता जी है। और कोई कई जगह कहते हैं कि ऐसे हैं कि वो राधा रानी बहुत बहुत मान है राधा रानी की, पातुपत में मान करती है, इसलिए कृष्ण को बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए वो जानव माता जी वो अनंग मंजरी तो जानव माता अनंग मंजरी है, तो इसलिए ये कभी कृष्ण के सेवा के लिए उनके साइड में ऐसे खड़ी होती है, ऐसे ऐसे अलग बात है। तो इसी प्रकार जानव माता जी ये जो शास्त्र प्रमाण के अनुसार वो काम्यवन में, लेकिन बहुत डिपारेंस की समय है, ऐसे मिलाएंगे तो बहुत बहुत की जैसे चैतन्य चरितामृत वगैरह लिखे शुरू किए, इसी समय भी ये गोविंद मंदिर में गोविंद जी विराजमान थे कृष्णदास कविराज के समय। तो इसकी भी बहुत बात बात की बात है, पता नहीं समंजस्य कैसे है। काम्यवन बहुत बाद में गए, तो काम्यवन में ऐसे ही जानव माता अपने ऐसी उनकी प्रविष्ट है हुई है। तीसरे प्रकार जानव माता जो है इतनी बड़ी वरिष्ठ पहले लीडर जो माता जी के रूप में
जो भी दो तीन लीडर बनी है माता जी गौड़ीय वैष्णव में कोई साधारण नहीं थी।
गंगा माता और हेमलता श्रीनिवास की बेटी है हेमलता, ये तीन लीडर बनी थी माता जी गुरु।
गंगा माता के लिए तो जगन्नाथ जी स्वयं बोले पंडित को इसको दीक्षा लो,
धरिष्ठ कर दिए थे राजा के साथ,
राजा और पंडित को सबको बोले दीक्षा लो। अभी भी आप पंडित से पूछेंगे कौन सा मठ से, बोले गंगा माता मठ से, परंपरा चल रहे हैं। तो इसी प्रकार तीन लीडर बनी थी।
तो इसके बाद एक भक्त की ऐसे उत्कंठा है,
हमें एक भी एक चीज पकड़ लेना चाहिए, दर्शन लालसा।
मधुपंडित जी की त्रिभाव तिथि है, मधुपंडित जी जो है हमारा
जो तीन ठाकुर, यही तीन ठाकुर गोरिया कोरिया से आत्मसात, यही तीनेर चरण मंद तीन मोर नाथ, राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ जी, बोले ये तीन ठाकुर गौड़िया आत्मसात किया है। ये कविराज कृष्ण बोलते ये तीनेर चरण बंदो, ये तीनों की चरण वंदना करो, तीन ही हमारा नाथ है। एक तो हमारा भौतिक कामनाओं को नष्ट करने वाले मदन मोहन जी है, काम मदन को जो काम को मोहित किए हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, और दूसरा सेवा में लगाएंगे गोविंद जी अविधे, और तीसरा प्रयोजन तत्व जो है वो गोपीनाथ जी है। थी गोपीनाथ जी आज जाह्नवी माता के साथ भी गोपीनाथ की कहे कथा है, और मधु पंडित जी बंगाल में उठे और वो गदाधर पंडित के शिष्य है, गदाधर पंडित के शिष्य है, उनसे भागवत सुना और पढ़ाई किए, उनके साथ पढ़ाई किए और उनसे सुना। तो भगवान के माधुर्यों के बारे में सुने। एक्चुअली हम लोग अभी साक्षात दर्शन नहीं कर सकते हैं, हमें भागवत से जो वर्णना है इसकी अनुसरी जो वर्णना है, साक्षात कृष्ण है, महाप्रभु के एक एक श्लोक श्लोक से पागल हो जाते थे, अष्टसात्विक बेकार उनमें हो जाते थे, खाली भागवत के श्लोक जो भगवान के रूप के वर्णन है। तो इसी पर भगवान के रूपों के वर्णन उन्होंने सुने मधु पंडित, तब से उनके मन में ठान लिया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की इस श्री विग्रह का दर्शन करना है, दर्शन करना। ये की लालसा है, हमारा तो लालसा आते हैं तुरंत प्रसाद में जाने से सब भूल जाते हैं, नहीं, उनके दिन रात 24 घंटा महीना के महीना सालों के साल एक ही लालसा के दर्शन करना है मुझे बस, और कुछ ठहरता नहीं उनके मन में, कृष्ण दर्शन लालसा। ऐसे में बंगाल से उन्होंने सुने कि नहीं, वृंदावन में कुंज में जहां तहां भगवान है, तो जैसे वो हर जगह जाते हैं, हर जगह यही नजर है भगवान श्री कृष्ण का है, उनके रूप माधुरी का दर्शन करना है। तो एक्चुअली हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, दर्शन करने से महापुरुष जी कहते हैं, जारो जगवर नयन लागे सदा तारो हृदय जागे, कृष्ण तनु जेनो अम्रयाठ हृदय जाई पोषी जाए जत्ने नाही बाही रहे, तोनु नहे सुआ कुलेर काटा। तो राधारानी के भाव में महाप्रभु कहते हैं कि जिसको भी एक बार नैन लग जाएगा, एक बार नैन लगे सदा उनके हृदय में जगेगा, सदा वो बंद नहीं। जैसे हम लोग कुछ पहले श्लोक जो है वो पूछे, जब संड अमर को पूछे क्यों, बोला ये हम अपने हिसाब से नहीं चलते, कृष्ण ग्रह कृष्ण रूप ग्रह आत्मा जो हो भूल नहीं सकते है, अलग जाने पकड़ लिया ना उसको, तो जिसको भी नयन पकड़ लिया एक बार कृष्ण, वो किसी भी हालत से छोड़ नहीं सकते उसको। वो कितने भी प्रयास करे, कितने भी प्रयास करे, किसी भी हालत से छोड़ नहीं सकते कृष्ण को। तो यही बता रहा है राधारानी की भाव में महाप्रभु बोलते, एक बार, केवल एक बार जिसका नयन लग जाएगा, सदा उनके हृदय में जगते रहेगा भगवान, किसी भी हालत से उसको बंद नहीं कर सकते, सदा उनके हृदय जगे। कृष्ण तनु जिस आम की गोंद जैसे चिपे, एकदम ऐसे चिपक जाते हैं, ये जो पनाश है आम है, इनकी गोंद आप लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और कपड़े में लग जाएगा, कपड़े फट जाएगा, लेकिन गोंद नहीं निकलेगा। तो ऐसे जैसे आम की गोंद जैसे है सदा, जैसे आम्रवाठा, और हृदय के अंदर, आंखों से हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जत्न यातनों जितने भी प्रयास करो, जितने भी प्रयास करो, निकालते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं निकालते हैं, और दर्शन नहीं मिल पाते, काटा के जैसे चुपते रहते हैं, सोआ कुलेर काटा, शांति में भी नहीं है। तो इसी प्रकार जो है भगवान, तो ये मधु पंडित की ऐसे लग गया था, उनके बात ऐसे लग गया, वो कभी उनकी नशा नहीं उतारते थे। एक ही, केवल एक ही चीज विषय पकड़ लिया कि मुझे दर्शन करना है। तो रोते थे, हर जगह बैठते थे, सभी से जिस किसी पूछे, जो भी मिले, कृष्ण दर्शन। तो जब ही ऐसे किसी से ठान लेते कृष्ण जाएंगे कहां, उनको जाने का उपाय नहीं है, हम उनको पकड़ते नहीं, वो तो देने के लिए तैयार है, हम पकड़ते नहीं, हम बड़े विरक्ति है इस विषय में, पकड़ने नहीं चाहते वो बिल्कुल। तो वो जाएंगे कहां, वो तो ऐसे पकड़ लिया। तो एक बार की बात होते कि वो जमुना जी की बहुत, तो जमुना बहुत तेजी धार से बहती थी, लेकिन जमुना जी के तीर में बहुत रोए दुखी होकर बैठे रहते थे, वृंदावन में भी मुझे कृष्ण दर्शन नहीं हो पा रहा है, मैं तो साक्षात कृष्ण का दर्शन और हमेशा दर्शन करना चाहता हूं। तो ऐसे धान में बैठे हैं, नीचे से मिट्टी जमुना की धारा में मिट्टी काट काट के गिर, आस पड़ोस की जो मिट्टी है गिर, आप लोग कभी देखे ऐसे होते हैं, गिर गिर के पूरा धार में गिरते हैं, तो ऐसे जो जहां बैठे थे ये भी गिरने वाले, तो इसके भी मिट्टी नीचे जमुना के धार में खा गए। तो इसके बाद गिरने ही वाले थे, भगवान स्वयं एक ब्रजवासी के रूप में आके बोले कि मधु आप उतरो, इधर इधर आ जाओ, तो अभी अभी गिर जाओगे। बोला ठीक है, गिर जाएंगे तो बहुत अच्छा है, कृष्ण दर्शन नहीं हो, ये ऐसे जी के लाभ के फायदा क्या है। तभी गिरने वाले तो उन्होंने खींच लिए, तो आ गए। इसी प्रकार भाव विभव कर, कोई उनके कुटिया वगैरह कुछ नहीं थे, एक दिन बहुत 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 रोए, रोकर उन्होंने बंशीवट के तट पे, बंशीवट के नीचे वो ऐसे भाव विभव होकर मूर्छित हो गए। तो उसी प्रकार साक्षात भगवान गोपीनाथ जी के दर्शन उनको मिले, गोपीनाथ जी के दर्शन उनको मिले, साक्षात भगवान, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मिले। तभी उनको तुरंत पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया, और कहते हैं कि प्रभु आप नहीं जा सकते, मैं हमेशा 24 घंटा आपको दर्शन करूंगा। तभी ऐसे जब उन्होंने कंडीशन रखे, बोला मधु ऐसे संभव नहीं है कलियुग में, कलियुग में ऐसे संभव नहीं है कि मैं हमेशा आपको ऐसे इस रूप में आपको प्रकट रहूं। बोला नहीं होगा। तो ऐसे करके फिर दोबारा इतने शोक से कि ऐसे साक्षात कृष्ण के दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बोले तो फिर मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर फिर गिर गए। तो उठे तो देखे साक्षात जो हम लोग गोपीनाथ जी जयपुर में दर्शन करते हैं, इस गोपीनाथ जी के रूप में, त्रिभंग रूप में साक्षात प्रकाट, विग्रह के रूप में प्रकाट हो गए। इसी प्रकार जय श्री गोपीनाथ के। तो ये गोपीनाथ जी तब से उन्होंने बोले, मधुपंडित को बोले कि देखो ये विग्रह और मुझ में कोई भेद नहीं है, इस विग्रह में मैं साक्षात कृष्ण हूं। तब से उन्होंने मंदिर, उन्होंने छोटी कुटिया बना के बंशीवट से गोस्वामी लोग मिलके, सभी गोस्वामी तब नहीं थे,
तो लाए और उधर जो आप लोग मंदिर देखते हैं कोई राजा के उनको मंदिर बना दिए, तो यहाँ पे उन्होंने सेवा करते थे मधु पंडित जी। तो यही एक निष्ठा, एक सामान्य एक निष्ठा उनकी कृष्ण दर्शन लालसा। तो किसी की भी छोटे छोटी सेवा में भी, छोटी के सेवा में श्रीनिवास जो हम समानंद प्रभु झाड़ू लगा के खुश कर दिए। दुखी केवल जल लेके आई थी, वो नकरानी थी, पैसा लेके काम करती थी, फिर भी महाप्रभु की कृपा छोटी छोटी एक एक चीजों में कोई पकड़ लेगा, ठान ले लेगा मैं इसी इसी में खुश होगा। हर कुछ करने का और हर साधन करने जाएंगे तो बिखरने का भी बहुत ज्यादा ही होते हैं। तो इसी प्रकार मधु पंडित जी की जो हमारा प्रयोजन विग्रह है, वो श्री विग्रह जो है मधु पंडित के द्वारा प्रकट है, जो आप लोग देखेंगे कि वो कैसे तर्पण उनमें था। उनका नेट या कोट पर अभी है ना, मधु पंडित जी की आप जयपुर में जाएंगे, उनका कोट वगैरह है। और जो जो दर्शन नहीं किए आप लोग जाके जयपुर में दर्शन करना चाहिए तीनों ठाकुर की। कोई कोई बोलते कि एक ही दिन में तीनों करना चाहिए, मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ एक ही दिन में करना चाहिए। तो इसी रूप में गोपीनाथ जी जो है जयपुर में विराजमान हैं, और ये बोलते हैं कि वृंदावन के राजा है, आप लोग अभी भी जाया के दर्शन करेंगे, कितने भाव गोविंद जी में लोगों का है आप लोग देखेंगे, राजा वास्तव में राजा ही है। तीसरे प्रकार मधु पंडित जी इनको सेवा ये किए। तो आज की जो तिथि है, ये तिथि में मधु पंडित जी अपने धाम में सेवा समर्पित करके अपने नित्य लीला हमेशा जैसे दर्शन कर सकते हैं ऐसे उन्होंने चले गए। तो ये गोपीनाथ जी की मधु पंडित की कथा है। और सीता, सीता नवमी है, सीता ठाकुरानी जो है वो जो जमीन है, जमीन में आप लोग कुंभ मेला में भी जाएंगे, हमारे इश्कुंड वाले तो नहीं करते हैं, आप लोग देखेंगे कि गेहूं उगा है। कोई भी पवित्र कार्य करना है तो वो जमीन में, ऐसे जमीन फालतू जमीन पड़ा हो उसमें आपको कुछ जैसे मंदिर भी बनाना है ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको पहले जमीन को जोताई करना है, कुछ फसल बोना है, नहीं तो बाज जमीन बाज समझा जाता है उस जमीन को। तो आप लोग जाएंगे कुंभ मेला, मैं तो लक्ष्य किया, आप देखे ना गेहूं बोते हैं, कुछ ना कुछ पहले बोते हैं उस जमीन में, जहां वो टेंट बनाएंगे कुंभ मेला में, वो भी वैदिक वैदिक रीति परंपरा है। तो मान लीजिए यज्ञ करना है, वैसे अच्छा जमीन है उसमें जाके यज्ञ नहीं करना है, पहले उसको जोताई करना है, कुछ फसल बोना है, तो तभी वो जमीन सजीवित हो जाते हैं, वो बासपन उसके नष्ट हो जाते हैं, नहीं तो वो जमीन ठीक नहीं है। जब आप जुताई कुछ फसल नहीं उगाएंगे, भले नहीं होगा लेकिन अब बो दिया अंकुरित हो गया तो जमीन आपका ठीक हो गया। तो इसीलिए यज्ञ के लिए जनक महाराज जी उस जमीन को जोत रहे थे। तो जोतते जोतते उसमें उन्होंने हल के जो एक, आप लोग हल तो भी देखा नहीं इधर हमारा बिलीज वाले हल अभी है कि नहीं आप लोग देखना, जो हल की कोई आईडी नहीं वही बिलीज का प्रचार कर रहे हैं, हल उल्टा उड़ के बनाया, वो कैसे उसमें जुताई होगा, वो हल जो देखा भी नहीं, हल प्रैक्टिकल नहीं है उसके, वो हल जो वही कंप्यूटर, वो केवल कंप्यूटर में खेती कर सकते, आपको फसल को भी नहीं मिलेगा, बहुत हरी हरी घास मिलेगा, हरी खेती हरी जो भी फसल आपको मिलेगा वो कंप्यूटर में, उससे ही आप नजर से खाना है और दूसरा को पेट नहीं भरने वाला उससे। तो उल्टा वो हल ऐसे होते हैं, हल ऐसे बना के रखा है, तो हल हल के ऊपर लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो ऐसे ऊपर एक लोहे का फ्लत एक ऐसे तीखा बना के लगाते हैं, क्योंकि वो लकड़ी जो बहुत ज्यादा घिस जाते हैं, एक महीने में खत्म हो जाएगा एक हल, कम से कम एक हल एक साल चलना चाहिए। तो उसके ऊपर एक फ्लत जैसे एक लकड़ी, अब जो ट्रक की जो पत्ती होते हैं ना उससे बनाते हैं, उससे बना देते हैं ऊपर लकड़ी के ऊपर, तो वो
मिट्टी खोदते हैं और टूट भी जाएगा लकड़ी होगा तो वो ऊपर रहते हैं, तो उसके उसको सीता बोलते हैं, सीता। तो उसमें एक मिट्टी के अंदर मटके फंसा और निकले, तो मिट्टी जब मटके जब फंसा तो उन्होंने जनक राजा उनको खुदाई की, खुदाई करने के बाद देखे कि एक दिव्य रूपी कन्या है, तो उसे अब जनक महाराज ले गए, यही सीता देवी है। इसी प्रकार इनकी अयोनी संभावा सीता देवी है। तो इसी प्रकार जनक महाराज ले गए, लेके उनके अपनी बेटी के रूप में वो। तो सीता जी ऐसे सती है, उनकी बचपन की जो खेलती थी वो भी छोटे कोई पुरुष बच्चे को स्पर्श नहीं करती थी, इतना सतर्क वो बचपन में थी। खेलती थी, खेलते समय कोई भी पुरुष बच्चे को स्पर्श नहीं करती थी सीता देवी। तो ऐसे जनक महाराज के घर में बड़ी होती रही और उनके नाम सीता उससे निकले, तो उनके नाम सीता ही हैं। और आप लोग जानते आखिरी में भी मिट्टी में ही गए, तो दूसरे जगह इतना प्रमाणित तो पता नहीं कुछ। तो सीता जी ऐसे ही रहे, बड़ी हो गई। तो एक बार क्या हुआ, सीता देवी अपने बगीचा में घूम रहे थे, शकिशत वन में उनके अलग से वन थी, तो उसमें जनक महाराज के उसमें, तो एक बार दो तोता, वो पहले वाल्मीकि के आश्रम में थे, वाल्मीकि के आश्रम में थे, ये लोग रामायण वह पाठ होता था, तो दो तोता है वो पूरा रामायण याद कर लिए थे। तो सीता जी की वो बाग बगीचा में गार्डन में जाकर वो रामायण की कथा कर रहे थे दोनों, पति पत्नी दो पैरोट। और तो वो उसको क्या बोलते हैं, पति पत्नी तोता और मैना, सुख साड़ी, सुख पक्षी साड़ी। तो दोनों रामायण की कथा कर रहे थे, रामायण की कथा करते सीता स्वयंवर की कथा चली, तो भी सीता जी इस बात को जब सुनी तो ये बोला शोकी इसको पकड़ लो, मेरे साथ राम की शादी होगी कि नहीं, तो इसी ये बता दिया रामायण में ऐसे हैं तो उसको पकड़ो। तो पकड़ने के बाद तो पकड़ के लाए और बोला कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक हमारा शादी नहीं होगी। तो बोले हम तो वन में रहने वाली हूं, मैं कैसे आपके महल में बोला किधर कैसी भी आपको व्यवस्था कर देंगे। तो इसी प्रकार वो जो सुख था बोले कि आप चले जाओ लेकिन ये जो साड़ी है ये रहेगी। तो बोले ऐसे नहीं हो सकते हैं, तो बोला मैं गर्भवती हूं तो ठीक है, मैं जंगल की हूं, मैं बच्चे पैदा करके वो जब अंडा देंगे बच्चे होंगे तो फिर आ जाऊंगे। बोला नहीं मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। बोला ऐसे नहीं हो सकता है। तो ऐसे मतलब वो बचपन से अब लाए तो वो आपको मन जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो कोई भी चिड़िया पकड़ रखेंगे उसको बहुत मुश्किल है, मर जाएगी। तो वो उसको छोड़ दिए पुरुष वाले को, और लेडीज वाले रही लेकिन शोक में वो मर गई। और दूसरा पुरुष वाले आ गए, आकर सीता जी को श्राप दिया कि तू बताती है कि हम बनवाले होकर इस तेरे महल में हम बच्चा पैदा करे, अब अंडा दे मेरी बच्चा हो, तो आपको भी ये श्राप है, आप नगर वाली होकर आपको जंगल में आपका बच्चा जन्म लेंगे, यही श्राप है, और इसका कारण हम दोनों बनेंगे। इसलिए ये पद्म पुराण की कथा है इनके। तो ये धोबा और धविन की पूर्व जन्म की इतिहास, गुप्तचर जब घूम रहे थे तो सारा अयोध्या में अवध में केवल रामायण की कथा होती थी, एक ही घर पे जाकर वो विपरीत सुने कि वो धविन कहीं किसी के घर में वो ऐसी अहमदाबाद मुंबई जैसे ऐसे हवा हुए थे वो आ नहीं पाई थी, तो दूसरा दिन जब आ गए तो उसको पीट के भगा दिया। बोला रामचंद्र जैसे नहीं है कि इतना साल रावण के पास रहने के बाद अपने पत्नी बना के राज रानी बना लिया, हम ऐसे नहीं है, तू बाहर जा चला जा। तो ये कहा बाहर क्यों रुके, तू हमारा पत्नी तो नहीं रह सकती है। तो इसके लिए तो ये गुप्तचर ने बताया, तो यही कारण बनी सीता जब गर्भवती थी उनके लप के उसके जन्म जंगल में हुए। तो महाराज बोले थे ये कथा मेरा तीन कथा सुना दी खत्म हो गया, क्या करें। तो यह अभी वाणी का विराम देते हैं, समायोति हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री जन्म माता की, जय मधु पंडित की, सीता देवी की, जय जगत गुरुशील प्रभुपाद की, नेताय गुरु प्रेमानंदी हरि हरि बोल।